جی ہاں، یہ بھی ایک وقت کی بات ہے۔ وہ طالبان جس کا صفایا کرنے کے لیے، اور وہ طالبان کے جس کے چنگل سے افغان عوام کو آزادی اور رہائی دلانے کے لیے امریکہ بہادر نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سن 2001 میں افغانستان پر چڑھائی کی، لشکر کشی کی اور تباہ حال ملک افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہی نہیں لاکھوں کی تعداد میں عام شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ اب وہی طالبان جس کو دہشت گرد قرار دیتے امریکہ نہیں تھکتا تھا، اطلاعات ہیں کہ سن 2010 سے اس نے مذاکرات خفیہ طور پر اور اب تو علانیہ اور آشکارا طور پر شروع کر دیے ہیں۔ کیا یہ طالبان وہ طالبان نہیں جو 2001 میں تھے؟ کیا یہ ملا عمر وہ ملا عمر نہیں جو 2001 میں تھے؟ یا کوئی بنیادی تبدیلی آ گئی، یا کچھ اور ہے؟ کیا ہے، کیوں کر ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں، اور چلتے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد جہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب غلام اکبر۔ غلام اکبر صاحب، السلام علیکم۔
سلام،
غلام اکبر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ جی
جی غلام اکبر صاحب، طالبان کے ساتھ اطلاعات کے مطابق 2010 سے امریکہ نے جرمنی میں خفیہ مذاکرات شروع کیے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کے سامنے جو حجاب تھا، جو شرم تھی، جو کوئی ہچکچاہٹ تھی، تو وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ تو علانیہ مذاکرات کر رہا ہے، اور قطر میں اس نے طالبان کا دفتر کھولے جانے کی اجازت بھی دے دی، اور قطری حکومت سے کہا کہ طالبان اپنا نمائندہ دفتر قطر میں کھول سکتے ہیں اور مذاکرات کھلے عام ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اب وہ طالبان وہ نہیں جو 2001 میں تھے؟
دیکھیں جی، امریکہ کی یہ نئی پالیسی تو نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس پالیسی کا آغاز تو 2010 میں ہی ہو گیا جب یہ خفیہ مذاکرات شروع کیے گئے، اور اس میں جو سب سے اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے جو امپیریل سامراجی عزائم تھے، جس کی وجہ سے اس کے ملٹری ایڈونچرز اس نے شروع کیے گزشتہ 20 برس سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان پہ عمل پیرا ہے، اور بلکہ اگر افغان جہاد سے شروع ہوئے، اس میں تو انڈائریکٹ پراکسی وار لڑی، انہوں نے پاکستان کی فوج اس میں استعمال ہوئی کسی حد تک، اور ساری دنیا سے ایک، لیکن اب جو ہے اچانک امریکہ اپنی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اسے اپنے سروائیول کے لیے، اکنامک سروائیول کے لیے 496 بلین ڈالرز بجٹ میں جو ہے وہ دفاعی بجٹ میں کمی کرنی پڑی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ افغانستان میں اپنے مطلوبہ نتائج جو ہے جو حاصل کرنا چاہتا تھا، جو اسے حاصل نہیں ہوئے، کہ اس کا مستحکم قبضہ ہو ایسا افغانستان پہ کہ دوبارہ اس کی مرضی کے علاوہ کوئی حکومت وہاں قائم نہ ہو سکے، کابل میں اسی کا سکہ چلے، اسی کا فرمان چلے، تو اسے پھر بہت بڑے نئی کمٹمنٹ کرنی پڑے گی، جو جس پوزیشن میں امریکہ اب نہیں رہا۔ دیکھیے، امریکہ ریٹریٹ پہ ہے، اور ریٹریٹ جو ہے پسپائی، جب بھی امپائر کو گرتی ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے فوجی شکستیں ہونا شروع ہوتی ہیں۔ میرا خیال میں جس جنگ کو 2002 میں بش صاحب خود تشریف لائے تھے اور انہوں نے ڈکلیئر کی تھی وکٹری کہ ہم جیت گئے اور صفایا ہو گیا وہاں مزاحمت کا، اور القاعدہ اور طالبان جو ہے نا وہ ہم نے ختم کر دیے، یہ 2002 کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد تحریک مزاحمت شروع ہوئی۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ خطہ جو ہے، کوئی بھی خطہ دنیا میں، کوئی بھی آزاد قوم، بلکہ لیکن افغانستان کی تو تاریخ ہی یہی ہے کہ وہ قابضین کو کبھی بھی یعنی وہ قبول نہیں کرتے، باہر سے قبضہ آ کر جو حملہ، پھر حملہ آور اگر ویسٹرنس ہوں، یہ سکندر اعظم نے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی لیکن وہ اسے وہ ادھر گیا ہی نہیں، پھر تو وہ پھر نہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ریزسٹنس جو ہے یہ اتنی زبردست طویل چلی ہے اور اس میں مختلف، اس میں صرف طالبان ہی نہیں، میرا خیال میں کہ ہر آزادی پسند، حریت پسند افغان جو ہے اس کو اندر سے وہ اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ کابل میں فرمان جو ہے بظاہر ایک وہاں کا ایک کٹھ پتلی حکمران ہو جو افغان کہلائے اپنے آپ کو، لیکن در حقیقت حکومت جو ہے نا وہ واشنگٹن سے چلائی جائے، تو یہ سچویشن جو ہے نا انہیں قبول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اب اگر فوجی چلے جاتے ہیں، جو ہر ایک فوجی کو وہاں رکھنے کا جو خرچہ ہے وہ امریکنز کے اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اب وہ جتنی جلدی پسپائی جو ہے نا وہ کرنا چاہتے، ابھی جو رپورٹ، یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے جو اپنے لیک کی ہے ٹائمز نے، اور جس پہ گارجین نے بھی بڑا تفصیل سے لکھا ہے، جس میں کہا ہے کہ امکان اس بات کا بالکل بہت مضبوط امکان ہے کہ جب بھی فوجی وڈرال ہوا تو بہت جلد طالبان دوبارہ قبضہ کر لیں گے کابل پہ۔ یہ صورتحال جو ہے اس سے ایک یہ دھماکہ ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا دھماکہ ہے کہ گارجین نے لکھا ہے کہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ہینڈ گرینیڈ جو ہے وہ کسی جگہ رول کر دیا جائے اور اگر وہ پھٹے تو اس سے تباہی ہوتی ہے، وہ صورتحال ہوئی ہے کہ اب امریکی فوجی جو وہاں موجود ہے اور امریکہ کا پورا آڈینس جن سے انہوں ٹیکس، جن کے ٹیکس پہ یہ جنگ لڑی گئی، وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم نے 10 سال اپنے کیوں ضائع کیے، اتنی دولت ہم نے کیوں ضائع کی، اپنی اکانومی کیوں تباہ کی، کیونکہ جن طالبان کو ختم، آپ نے خود ہی جو فرمایا کہ جن طالبان کو نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے بمباری کی، لاکھوں انسانوں کی جان جو چلی گئی اور اتنی بڑی بڑے پیمانے پہ جو ہے نا تباہی اس سے پہلے ویتنام میں دیکھی گئی، یہ ٹھیک ہے ویتنام میں اس سے زیادہ تباہی آئی تھی، اس میں تو جانوں کا ضیاع بھی زیادہ ہوا تھا، لیکن اس دور میں جبکہ ایک انسانی حقوق کا دور امریکہ کہتا تھا، اس میں انسانوں کو جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا اور پھر اس جنگ کو ادھر دھکیلنے کی کوشش کی گئی، جو ہے اس وقت ہمارا پاکستان جو ہے نا وہ اس کا شمالی حصہ بھی جو ہے نا وہ اس آگ اور خون میں لپٹا ہوا ہے، تو یہ امریکنس یہ سوال اپنے وہاں اب پوچھیں گے، تو اب ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ وہ کوئی ایگزٹ کا کوئی باعزت راستہ انہیں مل جائے۔
جی غلام اکبر صاحب بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔
امریکن پبلک کے سامنے آگے انتخابات کا سال ہے، اور انتخابات میں صورتحال یہ ہے کہ اوباما جو ہے، ہم
جی میں پھر حاضر ہوں گا غلام اکبر صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، بہت شکریہ، میں دہلی اسٹوڈیو چلتا ہوں جہاں پر اسٹریٹجک امور کے ماہر موجود ہیں جناب ڈاکٹر رشید خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صاحب جب افغانستان کی تاریخ یعنی 2001 کے بعد سے آج تک کی دیکھی جاتی ہے، جس میں یہ ہے کہ امریکہ وہاں پر موجود ہے طالبان کا صفایا کرنے کے لیے، اور طالبان کا صفایا کرنے کے اقدامات کے تحت اس کارروائی کے دوران جو لوگ مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں، وہ معصوم بے گناہ اور عام شہری تھے، دوسری طرف جب افغانستان کے اندر کی صورتحال دیکھی جاتی ہے تو طالبان اور قابض قوتوں کے درمیان کہیں کہیں مفاہمت بھی نظر آتی، چنانچہ آپ ہیلمند میں دیکھ لیں جہاں برطانوی فوجیں موجود تھیں، وہاں ان دونوں میں ایک طرح کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، تم کو ہم سے کوئی کام نہیں، ہم اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، تم اپنی سرگرمیاں۔ اسی طریقے سے افغانستان کے بیشتر جنوبی علاقوں میں جہاں سے رصد رسانی کے کام انجام دیتے ہیں امریکی فوجی اور نیٹو کے فورسز، وہاں طالبان کا قبضہ ہے، اور طالبان باقاعدہ رصد رسانی ٹرکوں اور ٹریلروں کے گزرنے کے عوض ان سے بھتہ اور ٹیکس وصول کرتے ہیں، یعنی ایک طرح کی مفاہمت ہے، اور دوسری طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس سے پہلے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں، مارے گئے بے گناہ لاکھوں کی تعداد میں عام شہری۔ تو یہ جو سارے تضادات پائے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کسی نورا کشتی یا کسی بڑے سنیریو کے تناظر میں نہیں دیکھتے اسے؟
دیکھیے یہ جو پوری سیاست ہے افغانستان میں، اگر آپ دیکھیں جس طرح سے غلام اکبر صاحب نے فرمایا، بالکل بہت صحیح، انہوں نے بہت ہی اچھی تصویر کو دکھایا और इसके अलावा अगर आप गौर करें कि 2011 में जब इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ इनके बारे में, खास करके जून और जुलाई में, कि ये इनके अंदर तालिबान और अमेरिकन के अंदर कुछ सीक्रेट टॉक्स चल रहे हैं, तो ये करीब 11 महीने इनके बीच सीक्रेट टॉक्स हुए, अभी तक कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली सिवाय इस कामयाबी के कि कतर ने कबूल किया है या तैयार हो गया है कि वहाँ पे इनकी इनकी एम्बेसी वहाँ पे कायम होगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जो पॉलिसी है ख़ास करके मुस्लिम वर्ल्ड में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी मुस्लिम कंट्री है, उसमें कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का आस्पेक्ट नहीं है, उसमें कोई भी रियल रिकन्सिलिएशन का आस्पेक्ट नहीं है, उसमें कोई भी ह्यूमनिटेरियन कंसिडरेशन नहीं है। अगर आप इराक को देखें कि किस तरह से इराक में उन्होंने कोई डेमोक्रेसी जो उनको लाना चाहिए था, जिस तरह से वहाँ पे लोगों के लिए काम करना चाहिए था, उन्होंने वहाँ पे नहीं किया। अगर आप सूडान में देखें, उन्होंने इसको स्प्लिट किया। उसी तरह से आप देखें कि सीरिया में जो उनकी पोजीशन है, वो क्या चाहते हैं, तमाम चीज़ें क्लियर हैं कि वहाँ पे सिविल वॉर वहाँ पे हो। इसके अलावा आप देखें कि ईरान में भी वो इंटरनल डिस्प्यूट्स को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, वहाँ पे सेशनिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो अफगानिस्तान में भी जो उनकी जो नीयत है, चाहे वो रिकन्सिलिएशन करें या रिकन्सिलिएशन की बात करें, या उसके लिए हिलरी क्लिंटन ने रॉडमैन हिलरी क्लिंटन ने जो फरवरी 2011 में जो स्पीच दी थी आपके एशिया सोसाइटी में न्यूयॉर्क में, इसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अमेरिका बिल्कुल कोई कंडीशन रखने को तैयार नहीं है, वो कंडीशन को हटा देता है। इसलिए कि तीन कंडीशन अमेरिका के थे। एक तो कंडीशन ये था कि भाई वो अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, दूसरा कंडीशन ये था कि वो वायलेंस को डिनाउंस करें, और तीसरा कंडीशन ये था कि अलकायदा से अपने लिंक को ख़त्म करें। लेकिन जो दूसरी तरफ जो अफगान जो तालिबान की जो कंडीशन थी कि वो जब तक के रिकन्सिलिएशन टॉक में शामिल नहीं होंगे, जब तक के अमेरिका वहाँ से अपनी फौज को नहीं हटाता। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि तालिबान में जो लोग हैं, तालिबान के जो मेन लोग हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि मुल्ला उमर के कुछ लोग आपके जर्मनी में हैं और यूरोप के कुछ और कंट्रीज़ में वहाँ पे हैं, जहाँ पे सीक्रेट मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि तालिबान और सऊदी अरबिया में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनकी बातें हो रही हैं एक दूसरे को, वो मना रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि तालिबान के अंदर जो स्प्लिट है, या तालिबान के अंदर जो और भी जो ग्रुप हैं, इसलिए कि जो टोटल तबाही हुई अफगानिस्तान में, वो अमेरिकन पॉलिसी की वजह से हुई, वो अमेरिकन अटैक की वजह से हुई, और इस पूरे तबाही का जो नुकसान है वो अफगानिस्तान के लोगों ने उठाया है। तो इस पूरे चीज़ों को सामने मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगता है कि तालिबान के अंदर स्प्लिट्स हैं, और ये स्प्लिट्स उभरेंगे अगर तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा रिकन्सिलिएशन करता है तो। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तालिबान और अमेरिकन रिकन्सिलिएशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अभी ये फाइनल इनका स्टेज नहीं आया है। इसलिए कि जो तालिबान के जो डिमांड्स हैं कि ग्वांटानामो बे में जो इनके 20 डिटेनीज हैं स्पेशली फ्रॉम तालिबान स्फीयर, कि इनको वहाँ पे कैसे छोड़ा जाए और इनको अफगानिस्तान में लाया जाए, तो इस पर अमेरिका अभी तैयार नहीं हुआ है। एक तरफ इशारा करता है कि वो इसे छोड़ देगा, लेकिन इसके अलावा आप यह भी देखें कि एक स्पेशल कानून तैयार किया जा रहा है ताकि उस कानून के तहत छोड़ा जाए, जिसके तहत उन 20 डिटेनिस को किसी भी तरह से कोई खास फैसिलिटीज ना दी जाए। तो मुझे ये लगता है कि जो नेचर है अमेरिकन पॉलिसी का, जिस तरह से उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, हैवॉक क्रिएट किया, डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया पूरे अफगानिस्तान में, और जो तालिबान, जिस तरह से तालिबान को नुकसान हुआ, पूरे अफगानिस्तान को नुकसान हुआ, इन तमाम चीज़ों को अगर आप रखें, तो मुझे ये लगता है कि जो सेंसिबल तबका है विद इन तालिबान, वो अभी भी अमेरिका के रिकन्सिलिएशन के पॉलिसी फ्रेमवर्क में फिट नहीं।
डॉक्टर साहब, मैं फिर हाजिर हूँ।
दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि
मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इस्लामाबाद से सीनियर साफी मोहतरमा फौजिया शाही साहिबा। मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام.
محترمہ یہ کون سی مجبوری تھی طالبان کے لیے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ جب تک افغانستان سے امریکہ نہیں نکلے گا ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور دوسری طرف امریکہ کے لیے کیا مجبوری تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ طالبان کا صفایا کر کے ہی ہم دم لیں گے اور اس سے مذاکرات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اب دونوں مذاکرات کر رہے ہیں، کیا مجبوری ہے دونوں کی؟
یقیناً آپ نے جو پہلی بات کی ہے آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان کی جانب سے بہت پہلے جب ڈائیلاگ کی بات کی گئی تو امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات اسی ڈائیلاگ لفظ سے ہی خراب ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈائیلاگ کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، اور امریکہ کا یہی تھا کہ وہ طاقت کے زور پہ کسی نہ کسی طرح وہ ان کو ظاہر ہے کہ زیر کر لے گا. لیکن ابھی جو آپ مجبوری کی بات کرتے ہیں تو مجبوری میں لفظ استعمال نہیں کروں گی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو اس نے عراق میں ایک انتہائی شرمناک شکست کھائی ہے، اور اس کے بعد اب یہ افغانستان میں بھی انتہائی شرمناک اس کو شکست ہوئی ہے، اور وہ اتنی حکومت وہاں بنانے کے، حکومت کو سپورٹ کرنے کے، حکومت کو دوبارہ لانے کے باوجود بھی وہاں افغانستان کے 20% سے زیادہ علاقے میں نہ تو حکومت وہاں حکمرانی کر سکا اور نہ ہی وہاں کسی قسم کے طالبان کو زیر کر سکا. نہ تو میں طالبان کو سپورٹ کرتی ہوں اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی طرح یہ ہم کہیں کہ کوئی طالبان بہت بہتر تھے، لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک کے جو اکثریت ہے ان کا حق ہے کہ وہاں حکمرانی کریں. اگر کوئی باہر سے آ کے حکمرانی کرتا ہے تو اسی طرح امریکہ کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی، اور آپ نے جیسے یہ خود لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ یو ٹرن کرنا پڑا ہے، اور ابھی اس کا آپ کو بھی پتا ہے کہ امریکہ کی معیشت کا کیا حال ہے. اس وقت اگر پوری دنیا میں معیشتوں کی ڈیٹیلز میں جایا جائے تو میرا خیال ہے کہ بدترین معیشت جو ہے امریکہ کی قرار دی جائے گی، جس کی پوری بنیاد جو ہے وہ کریڈٹ پہ اور اس کے جو اپنا بجٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے اس کے کریڈٹ اور قرضے یا اس کو ڈیٹ جو بھی کہہ لیں اس کے اس میں پھنسا ہوا ہے. اور اس پہ جو افغانستان کی جنگ پہ جتنی بڑی اس میں رقم خرچ کی گئی، افغانستان کے لیے جتنی کی گئی اسی سے زیادہ اتنی ہی تباہی ہوئی. اب افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ صرف کابل کو چھوڑ دیں، باقی پورا ملک جو ہے وہ کسی طرح بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رہنے کے قابل رہا ہے، ہر چیز جو ہے تباہ ہوئی ہوئی ہے. اب طالبان کے لیے پہلے بھی طالبان کی جانب سے یہی ریزسٹنس تھی کہ امریکہ کی یہاں موجودگی، ان کے علاقے میں موجودگی یا نیٹو فورسز کی موجودگی جو ہے ان کی سیکیورٹی کے خلاف ہے، اور اسی کے لیے جس طرح انہوں نے پہلے سوویت یونین کے خلاف، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے سوویت یونین کے خلاف ایک اپنا وہ مکمل طور پہ جنگ کی تھی، اسی طرح انہوں نے نیٹو فورسز اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اپنا ایک انہوں نے اپنا ایک سٹائل بنایا، جس سے یقیناً پاکستان بہت بری طرح متاثر ہوا، پاکستان کے شہر متاثر ہوئے، افغانستان متاثر ہوا. اب دونوں طرف جو ہے ایک کلیا تو پوری دنیا میں آ چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک بڑی سے بڑی طاقت جو ہے طاقت کے ذریعے کسی دوسرے ملک کی زیر نہیں کر سکتا. اور امریکہ کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ وسائل خرچ کرنے کے باوجود دو حکومتیں اس کی، جو پہلے پچھلے بش حکومت کو اگر دیکھتے ہیں، ایون یہ اوباما کی اب حکومت دیکھتے ہیں، اوباما کے پاس اب کوئی ایسا سوال نہیں رہا یا ایسی کوئی چیز نہیں رہی کہ جس کو لے کے وہ دوبارہ عوام کے پاس جائے. سب سے زیادہ مشکل میں آئندہ الیکشن کے لیے وہ اسی صورتحال سے دو چار ہے، اور یہی وجہ، یہ سب سے بڑی مجبوری ہے کہ وہ کیا اپنے عوام کو بتائے گا کہ اتنا جو بجٹ کیا وہاں اس نے کیا حاصل کیا. اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی جانب جو آ رہا ہے، اور یہی اگر طالبان کا بھی دیکھیں، دیکھیں طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں ابھی تک تو طالبان کی صحیح ڈیفینیشن ہی نہیں ہو سکی. کسی کو کوئی کہتے ہیں کہ کوئی گڈ طالبان ہے، کوئی بیڈ طالبان ہے، پھر ایک القاعدہ ایک ہے، یقیناً اس کی ایک بالکل الگ پہچان ہے. اب طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اب ہر جو مذہبی شخص ہے اس کو آپ کسی طرح ملیٹنٹ نہیں کہہ سکتے. ہمارے اپنے ایک رہن سہن ہے، ہمارے مسلمانوں کے اپنا ایک سٹائل ہے، ظاہر ہے کہ وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں اور ان کا اپنا جو بھی ہے کچھ ٹوپی پہننے کا بھی کچھ علاقوں میں سٹائل ہے، وہ اپنی ان کی ایک پہچان ہے. لیکن اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ کوئی دہشت گردی سے منسلک کر دیں. تو یہ جو سامنے کلیا بھی آیا ہے، اور کل جو ایک روزہ دورہ کیا ہے ہماری وزیر خارجہ نے، जो अफगानिस्तान का, तो इसमें जो चीज सबसे अहम सामने आई, और मैं जाती तौर पर भी समझती हूँ कि इलाके के ममालिक जो हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो पाकिस्तान है, ये ममालिक, इवन हम उज़्बेकिस्तान वगैरह की भी देखते हैं जिनकी यहाँ सरहदें मिलती हैं, यही इस खित्ते के मसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि बराह रास्त इसके मसाइल के असरात जो है इन्हीं ममालिक पे पड़ रहे हैं। और अभी जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, अब अगली जो मुझे बहुत खौफनाक चीज दिखाई देती है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले अमेरिका के हवाले से बात की जा रही थी, अमेरिका का मुझे एक जो अगला स्टेप जो दिखाई देता है, जो बहुत ही मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि इंतहाई मजीद शर्मनाक होगा, जो ईरान के लिए अब यहाँ से फोर्सेस किसी जगह से जमा करने के बाद वो ईरान के लिए भी जाहिर है कि जिस तरह की जुबान इख्तियार कर रहा है और जिस तरह की उसकी लैंग्वेज है, तो एक और इस खत्ते में हॉटबेड बनाने के जो उसका अगर मूड है, तो ये भी हमें सोचना होगा, इस इलाके के ममालिक को सोचना होगा कि वो अमेरिका के इस इलाके में क्या अजाइम है। फिर ये भी बात आ रही है, आपको भी इल्म होगा कि कुछ वो मुस्तकिल जाहिर है कि ड्रोन की शक्ल में यहाँ कोई अड्डे रखना चाहता है, और ड्रोन जो है वो ऑपरेट
यकीन फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। जी नवाजिश आपकी। गुलाम अकबर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तालिबान जो अपनी पहचान और शनाख्त, यानी गुज़िश्ता 10-11 बरस में जब से अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्ज़ा हुआ है, इस हवाले से बना रहे थे कि हम ही हैं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा हम उसके साथ कभी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर ना बैठेंगे। अगर तालिबान ने अपने इन नारों की वजह से कुछ हलकों की हमायत हासिल कर ली होगी या करने में कामयाब रहे हुए होंगे, तो अब जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका के साथ बैठ गए हैं और ये बात आशकारा भी हो गई है, तो खुद तालिबान की साख इस पहचान के ताल्लुक से क्या बनेगी कि जो अब तक वो अमेरिका मुखालिफ नारों के साथ मैदान में थे?
देखें जी, तालिबान अब एक यकीनी तौर पे एक तंजीम थी। जब जंग शुरू हुई थी, जब 2001 में हमला हुआ, उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी और हम तालिबान की पहचान हम कुछ नामों से करते थे, मुल्ला उमर, जिसमें सर फहरिस्त हैं कि मुल्ला उमर के जो भी पैरोकार थे या उनके जो साथी थे या उनको जो सपोर्ट करते या उनकी फ़ौज जो थी वो तालिबान थे। लेकिन अब 10 साल बाद तालिबान की छतरी तले मैं समझता हूँ कि एक नए अंदाज का वार लॉर्डिज़्म जो है वो हमें शुरू हो चुका है। अब देखिए, अभी अमेरिकन्स ने जो खुफिया दस्तावेज जो लीक की है उसमें ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान जो है वो अंडरग्राउंड या खुफिया तौर पर तालिबान रेजिस्टेंस को या तालिबान इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा है, और इसकी अगरचे डिनायल भी आ जाते हैं, ऊपर ऊपर से वाइट हाउस भी कर देता है, स्टेट डिपार्टमेंट से भी आ जाता है, लेकिन वहाँ के जो प्रिंट के ज़रिए एम्बेडेड जो उनके जर्नलिस्ट हैं पेंटागन के, वो जो बातें ये लीक करते हैं, CIA के भी एम्बेडेड जर्नलिस्ट होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो अपने जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उनके लिए वो अपना रास्ता हमवार करते हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं अगर पाकिस्तान वाकईतन, अगर एक फर्ज कर लिया जाए कि वो इस रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है और उसकी ख्वाहिश है कि जब अमेरिकन्स जाएं तो काबुल पे इन तो वो तालिबान कौन है जिनके साथ हमारी यहाँ जंग चल रही है, जिसमें हम हर रोज़ ख़बरें आ रही हैं कि हमारी फ़ौज उन पर हमला करती है, वो हमारी फ़ौज पर हमला कर रहे हैं और वो हमारे शहीद हो रहे हैं सिपाही और वो भी मारे जा रहे हैं, तो ये लोग कौन है? तो ये तो एक बड़ा पैराडॉक्स है ना। इसका मतलब ये है कि तालिबान के बैनर तले मुख्तलिफ ग्रोह, वही वर्ल्ड लॉर्डिज्म जो यानी जब रशियंस को शिकस्त हुई थी और उन्होंने विड्रा किया था तो वहाँ मुख्तलिफ फौजी ग्रोह यानी या आप टोलियाँ बन गई थी जिन्होंने अपना अपना एजेंडा लेके वो मैदान पे आए थे, और फिर एक खाना जंगी हुई जिसके नतीजे में तालिबान उठे और उन्होंने जाके कंधार पे फिर काबुल पे कब्ज़ा किया। वो सूरत हाल, ये सूरत हाल दोबारा दोहराई जा सकती है। इस तरह के हो सकता है कि जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान काम कर रहे हैं उनको असला कोई या उनको सपोर्ट या उनकी माली इमदाद या उनकी डायरेक्शन किसी सतह वाशिंगटन से हो रही हो कि वो चाहते हो कि पाकिस्तान एक हॉट वार में उलझा रहे और वो तालिबान जिनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो अपनी शरायत पे उन तालिबान, क्योंकि एक अमेरिकन्स को शुरू से CIA में एक बड़ा डिक्टम रहा है जिस पर वो उनका बिलीफ है कि आप डॉलरों के यानी संदूक भर के बैग्स ले जाएं तो आप जो भी चाहें डील वहाँ से हासिल कर सकते हैं, ये उनका बिलीफ है। और जब भी वहाँ से ये कर्जई उसकी एक पैदावार है, मतलब ये कि मैं बिल्कुल कहूँगा ये भी इसी फिल्म तना मना की पैदावार थे, तो उन्हें भी तालिबान के अंदर भी किसी न किसी कर्जई की तलाश होगी। अब ये मुमकिन होगा या नहीं होगा, क्या कोई भी ग्रोह जो है वो तालिबान के बैनर तले अमेरिकन एजेंडे को आगे काबुल में चलाने के लिए आमादा होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे यही नज़र आ रहा है कि जब भी रिट्रीट, अब जो भी माहदा हो जाए अगर कोई होता है तो अमेरिकन रिट्रीट लाजमी है। अब उन्होंने जो सन बताया हुआ है 2014 तक वो जाएंगे, अब उससे बियॉन्ड उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। देखना हालात आखिर कितने बड़े खसारे पे वो जा सकते हैं, वहाँ की इकॉनमी जो है बुरी तरह शटर है, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई सोच भी नहीं सकता था अमेरिकन इस सूरत हाल से अमेरिकन जो है ना सामना करेंगे कि वो पहले तो वो क्रेडिट कार्ड लेके जाते थे, जो चीज़ चाहते थे वो खरीद लिया करते थे, अब तो कैश चाहिए ना, कैश उनके पास है नहीं। मैं एक एवरेज अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। इस सूरत हाल में कोई वार एडवेंचरिज्म जो है, जो रिपब्लिकन नारे तो लगा रहे हैं ना अभी, वो जो जो इनका गिंगरिच है जो जो रिपब्लिकन पार्टी का टॉप है, उसके बाद रोमनी जो है ना वो मॉडरेट है, वो ऐसी बातें गैर जिम्मेदार। बाकी जो राइट का टी पार्टियर्स के लिए ये लोग तो कह रहे हैं कि तबाह कर दो, ईरान को भी उड़ा दो, अफगानिस्तान में पाकिस्तान को भी इनको सबक सिखा दो, और ये बातें कहने की बड़ी आसान है लेकिन इन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि वाहिद हल ये मुज़ाकरात होने चाहिए तालिबान के साथ, रेजिस्टेंस के लीडर्स के साथ होने चाहिए, लेकिन इस मुज़ाकरात की अमल में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत और साथ ईरान की शिरकत भी लाजमी है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान वैसे भी नस्ली तौर पर भी और पड़ोसी हैं, दो बड़े पड़ोसी हैं अफगानिस्तान के, इस वजह से भी, और एक हद तक तुर्क बेल्ट भी है तो इसमें टर्की की इन्वॉल्वमेंट भी जो है ना वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक इस खत्ते में अमेरिका निकल जाए, चाइना निकल जाए, रशिया निकल जाए, इंडिया निकल जाए, लेट पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड अफगानिस्तान ये बैठ के इस इलाके के अमन का फैसला करें, यही वाहिद हल है, इसके अलावा कोई हल जो है ना वो चलेगा नहीं।
जी मैं फिर आज उनका आपकी खिदमत में, डॉक्टर अर्शी साहब आप देखें, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जैसा कि मुज़ाकरात अमरीका और तालिबान के दरमियान हो रहे हैं, कि तालिबान के बैनर तले कोई इसी नाम से एक हुकूमत काबुल में लाई जाए, तो क्या अमरीकी आवाम इस बात की इजाज़त देंगे अपनी हुकूमत को ओबामा इंतज़ामिया या उसके बाद जो भी इंतज़ामिया हो कि वो तालिबान ही के नाम से एक हुकूमत दोबारा काबुल में कायम करें, एक और दूसरे क्या अफगानिस्तान के आवाम इस बात को कबूल करेंगे कि तालिबान दोबारा उन पर मुसल्लत हो जाए, और इसी में एक तीसरी शिक ये भी सवाल की कि क्या अगर तालिबान आएंगे तो अपने उसी नज़रिए और उसी आइडियोलॉजी के साथ आएंगे जिसके तहत वो 90 के अशरे के आखिर में आए थे। जी
देखिए, जैसा कि गुलाम अकबर साहब ने कहा कि अभी जो अमेरिका है वो बेसिकली तलाश कर रहा है तालिबान के ही अंदर कर्जाई का, तालिबान के कर्जाई को एक तलाश करने में लगा हुआ है अमेरिका। मेरे ख्याल से अगर बहुत ही अच्छे सिंध की तरफ उन्होंने इशारा किया है, अगर आप बिल्कुल गौर करें कि इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हमारे पास कोई भी खबर मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही है कि जो विद इन तालिबान जो स्प्लिट्स हो रहे हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, एक ग्रुप कह रहा है कि वो अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ वो अमेरिका से बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप ये देखें कि जो उनके जो स्पोक्समैन हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं खास करके जर्मनी में उनसे बात कर रहे हैं और उनको वो सेफ रखे हुए हैं, दूसरी तरफ वो मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ड्यूबियस अंदाज से है। अमेरिका आपको जानते हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम के तहत अमेरिकन इस्लाम को लाना चाह रहा है, पॉलिटिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस की जगह पे अमेरिकन इस्लामिस्ट फोर्सेस को लाना चाह रहा है, तो इसमें एक बहुत अच्छी तरफ इन्होंने गुलाम साहब ने इशारा किया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस मुस्लिम इशू में कतर का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, मैं उसमें इस्लामिक फैक्टर को बहुत ही शक्की अंदाज से देखता हूँ, इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, और जिसको कहा जाए कि रियलिज्म, जो पॉलिटिकल रियलिज्म है, उसका बिल्कुल ही साफ चेहरा नजर आता है कि किस तरह से अमेरिका दोबारा तालिबान को इस्तेमाल करना चाहता है। पहले उसने इस्तेमाल किया था आपके वॉर के पहले, 2001 के पहले, उसके बाद फिर वो उनको डिस्ट्रॉय किया और फिर उनका इस्तेमाल करना चाहता है। आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल डिस्पोजेबल कल्चर में यकीन रखता है, जब तक आप इस्तेमाल के लायक हैं इस्तेमाल किया जाए। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था आपके लिए कि अगर आप देखें कि ये जो स्ट्रेटजी है जो जिसके तहत अमेरिका बात कर रहा है तालिबान से, इसके बारे में बॉब वुडवर्ड की किताब जो है ओबामाज वार में खास करके कही गई है, जो सितंबर 2010 में छपी है, जिसमें एक जो नई टीम है ओबामा की, वो बिल्कुल अफगानिस्तान से हटकर अपने वॉर को पाकिस्तान की तरफ ले जाना चाहती है, पाकिस्तान पे को डिस्टर्ब करना चाहती है। इसको बोलते हैं अफ पाक जो है पॉलिसी, और इसके तहत आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उस पर बहुत ही ज्यादा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका का रोल है, बहुत सारे स्टेटमेंट से आपको बिल्कुल कवर्ट एक्शन प्रोग्राम वहां पे जारी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने, ये भी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान को नुकसान ज्यादा पहुंचाने में मदद नहीं की अमेरिका की, इसीलिए अमेरिका ने वहां पे तहरीक तालिबान उसको शुरू किया। लेकिन एक इसमें नुक्ते की बात यह है कि इस वक्त अमेरिका एक ट्रंप कार्ड हासिल करना चाहता है, वो ट्रंप कार्ड ईरान के खिलाफ हासिल करना चाहता है, इसके लिए वो आईएईए के पीछे लगा हुआ है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वो बहुत सारे साजिशों में भी शामिल है ईरान के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूरे अरब वर्ल्ड को अमेरिका ये सिग्नल देना चाहता है कि वो तालिबान से बात करके वो मुस्लिम दुनिया के मुखालिफ नहीं है, सुन्नियों का मुखालिफ नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तीसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो मुज़ाकरात अमेरिका जो चला रहा है, इसमें ये भी एक फैक्टर है कि किस तरह से स्ट्रेटजिकल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान शुरू से लेकर के अभी तक के बिल्कुल इस चीज पे जिद है या इस पे अड़ा हुआ है कि उसका एक बहुत ही मेजर रोल है पूरे अफगानिस्तान में। इसके लिए वो अमेरिका बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन की सिचुएशन है। तो अभी इस वक्त अमेरिका इस मुज़ाकरात के तहत ईरान के भी खिलाफ इनडायरेक्टली इम्प्लिसिटली माहौल बनाना चाहता है, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, अरब वर्ल्ड को दोबारा खुश करना चाहता है, इसके लिए कतर को क्रेडिट देना चाहता है, इसलिए कि कतर जो है वो काफी डिसक्रेडिट हुआ है। अगर आप कतर के रोल को देखें तो इस वक्त कतर जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने सीरिया के खिलाफ काफी आवाजें उठा रहा है कि उसके खिलाफ एक्शन हो, टीम भेजी गई सीरिया में, आपको ये पता है। लेकिन ये जो उसके अलावा आप देखेंगे अभी जो पैलेस्टाइन में जो बहुत सारी सिचुएशन है, ये तमाम एक्शन जो लीबिया के खिलाफ लिए गए या ईरान के खिलाफ लिए जा रहे हैं, आपके सैंक्शंस, ये तमाम चीजें इसराइल के खिलाफ लेनी चाहिए थी, इसलिए कि इसराइल ने तमाम चीजों की आपके वायलेशन किया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, जेनेवा अकॉर्ड का वायलेशन किया, यूएन चार्टर का वायलेशन किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का वायलेशन किया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं। तो यहां पर आप देखें कि कतर बिल्कुल इसराइल के खिलाफ खामोश है, पैलेस्टीनियन के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, अरब लीग पैलेस्टीनियंस के लिए कुछ नहीं उस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन वो सीरिया के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक इमेज क्राइसिस है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज किया है कतर ने, अरब लीग ने। तो इस सिचुएशन में आप देखें कि जिस तरह से वो तालिबान से बात करना चाह रहे हैं कतर ने उसकी, तो उस तरह कतर भी अपने इमेज को रीबिल्ड करके सीरिया के खिलाफ अपनी पोजीशन को और मजबूत करना चाहता है, और नेचुरली आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल वो ईरान के भी खिलाफ पॉलिटिकली करना चाहेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका,
ओवर टू यू।
जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त फौजिया शाही साहिबा से मेरा अगला सवाल होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर अमेरिका इस जोन में है कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके अपनी मुस्लिम दुश्मनी इनको किसी तरह से कम करना चाहता है और बावर कराना चाहता है कि हम मुसलमानों के या ख़ास तौर पर सुन्नी मुसलमानों की दुश्मनी, तो जाहिर ये उसकी खाम ख्याली है। इसलिए कि जब तक अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती तर्क नहीं करेगा और फिलिस्तीन और मुसलमानों के क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस के ताल्लुक़ से इसराइल को कंडम नहीं करेगा और फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो मजालिम हो रहे हैं उनको बंद कराने में आगे नहीं आएगा, और जो दीगर मुसलमानों के मुक़द्दसात की इहानत अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहे हैं उससे वो हाथ नहीं खींचेगा, जाहिर है कि मुस्लिम दुनिया इतनी भोली या इतनी सादा लो तो नहीं है कि वो ये समझ जाएगी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके वो ये कोशिश कर रहा है कि बावर कराने की कि हम मुसलमानों की दुश्मनी। खैर, ये एक अलग बात रही। फौजदार शाह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2010 से जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं, खुफिया मुज़ाकरात, क्या समझा जाए कि उसने पाकिस्तान को एतमाद में लिया था?
नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उस तरह एतमाद में नहीं लिया गया, और पाकिस्तान की जानिब से यकीनन जो फौरी तौर पे जो मैंने पहले जिक्र किया था अफगानिस्तान का, जो हमारी वजीर खारजा ने दौरा किया है, यकीनन वो पाकिस्तान का एक जो मैसेज था वो ये कर्जे को कन्वे करना था कि अगर इस इलाके में कोई ऐसा हल होता है जो पाकिस्तान को बताए बगैर होगा तो एक ज्यादा बेहतर तौर पर इसका देरपा हल साबित नहीं होगा। और चूंकि पिछले दिनों से जो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक जिस महज पे जा रहे हैं, खासतौर पर फलाला चेक पोस्ट के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जिस नहज पे हैं, इस पे यहाँ एक अलग सा बिल्कुल बात है, लेकिन उससे पाकिस्तानी अवाम में एक बहुत ज्यादा उम्मीद पाई जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका के अजायम से शायद वाकिफ हो चुकी है। लेकिन यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है, जो भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इस्लामी उम्मा के बारे में जो अमेरिका के अजायम है, अमेरिका पाकिस्तान समेत तमाम जो इस्लामी मुल्क हैं किसी तरह नहीं चाहता कि वहाँ मजबूत जमहूरी हुकूमतें हों, और क्योंकि उसके अजायम बहरहाल मुसलमान मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में है, और हम ये देखते हैं कि जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस या इस्लामी कौंसल जब उनके कहने पे चलती है, अब इस्लामी जब उम्मा की हम बात करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत शर्मनाक चीज है कि हम वो नतायज हासिल नहीं कर सके। हम एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमने आज तक मुत्तहिद होके अमरीका को कभी ये मैसेज नहीं दिया कि मुसलमानों के खिलाफ जो उनके अजायम है वो हमेशा जिस तरह पेश आता रहा है, ये मुसलमान मुल्कों को हमेशा उसने किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपने जो पहले बात की, मैं इस पे यकीनन आप इत्तफाक करती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना जरूर जायजा लेना चाहिए अमरीका के हमारे जो बाहमी इख्तलाफात हैं इस्लामी उम्मा के, अमरीका के अजायम को वो सपोर्ट करते हैं, और हमने हमेशा अमेरिका के अजाइम को ही सपोर्ट किया। अभी आप जब हम शाम की बात कर रहे हैं, सीरिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, अमेरिका के अजाइम को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस्लामिक कौंसिल क्या कर रही है, इस्लामिक कौंसिल जो बिल्कुल अमेरिका की तर्जुमान दिखाई देती है वो इस तरह काम कर रही है। मकसद कहने से ये है कि पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक जो है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उनके अमेरिका के आलाकार बने हुए हैं, हमें इसका कोई हमें एतराफ करना पड़ेगा। अगर यहाँ किसी भी मुल्क ने, अभी हम ईरान ही की बात लेते हैं, मैं ईरान की हो सकता है बेशुमार चीजों से इख्तलाफ करती हूँ, लेकिन ईरान ने जिस तरह स्टैंड लिया, आप ये देखिए ना कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही। बेशक वो अपनी एक चालें वो कर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ईरान के खिलाफ इस तरह कोई खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का इकदाम कर सके। तो इस्लामी मुल्कों को अपनी ताकत को समझना होगा। और जहां तक आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल इसमें यकीन है, जो मैंने पहले बात की है कि इस इलाके का अम जो है वो इलाके के ममालिक के इतिहाद पे है, इलाके के ममालिक ही इसके बेहतर उसका सलूशन निकाल सकते हैं। उसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की का जो किरदार है, यकीनन अफगानिस्तान को भी इसमें नगनीय किया जा सकता है। ये चार ममालिक मिलकर ही इस खत्ते में अमन कायम कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि नेटो फोर्सेस का कोई किरदार होगा, अमेरिका का किरदार होगा, तो वो अपने मकासद के लिए होता है। अमेरिका यहाँ अगर मौजूद है तो वो सिर्फ उसके अपने मकासद है, उसको किसी तरह ना तो अफगान हुकूमत से कोई ताल्लुक है, ना अफगान तालिबान से कोई मसला है। और ये एक अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई किसी तरह का अमेरिका जो है उसके यहाँ मफादात नहीं है, तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। अमेरिका यहाँ अभी भी जो ये 2014 की जो बात है, मैं आपके ही प्रोग्राम में कई दफा कह चुकी हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये सिर्फ आई वॉश है, वो यहाँ से नहीं जाएगा। और अभी जो ये जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जिसमें ड्रोन की बात की जा रही है, मैं फिर ये रिपीट करना चाहूंगी कि वो यहाँ ड्रोन की शक्ल में किसी जो मुस्तकिल रहना चाहता है उसको बाज़ औक़ात हम अड्डों का नाम देते हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसको तो ये कहते हैं कि नोएडा से ऑपरेट होती है, ये तो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान से ऑपरेट नहीं होती।
बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया। गुलाम अकबर साहब, दो मिनट के अंदर मैं आपसे जवाब चाहूँगा, इससे ज़्यादा मेरे पास वक्त भी नहीं बचा है। हिना रब्बानी खर साहिबा वापस अफगानिस्तान से पहुँची, उन्होंने कहा है कि अगर अफगान हुकाम कहें तो हम हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान को अमन के लिए आगे ला सकते हैं। अब जबकि तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, यानी शुरू तो हैं, आश्कारा हो चुके हैं, तो क्या हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के ताल्लुक से जो हुकूमत पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से दबाव था वो दबाव कम हो जाएगा और पाकिस्तान का हाथ खुला छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब तो उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए और हक्कानी नेटवर्क का कहना है कि हम और अफगानिस्तान के तालिबान अलग नहीं।
देखिए, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा जिसकी तरह मैंने पहले इशारा किया था कि अमेरिका का फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन यही है कि वो उन तालिबान से बातचीत करे जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में ना हो। वो नहीं चाहता। देखिए, उन्होंने दो नाम रखे थे, क्वेटा शूरा जिसमें मुल्ला उमर की शख्सियत मरकज़ी हैसियत रखती थी, और दूसरे हक्कानी नेटवर्क जिसमें जलालुद्दीन और सिराजुद्दीन हक्कानी ये मरकजी शख्सियात हैं। अब इनके बारे में एक आम तासर यही है कि ये उनके लिए बैड तालिबान हैं। अब उनके गुड तालिबान कौन हैं ये हम नहीं जानते, वो किन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, किन लीडरों से, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर बड़ी आई थी, इसमें धमाका भी हुआ था कि अमेरिकन से कुछ लोगों से गुफ्तगू करते रहे और बाद में पता चला कि वो लोग ही नहीं थे जिनका तालिबान से कोई ताल्लुक हो, वो एक बैरूपिये थे। तो अब हमें जब तक के ये बात, मैं फिर कहूँगा कि जब तक के दोनों पाकिस्तान बुनियादी तौर पर और ईरान, इनको जब तक आप शामिल नहीं करेंगे किसी मुज़ाकराती अमल में, उस वक्त तक हकीकी अमन जो है ना वो तो कायम।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
मुज़ाकरात कर
रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर वो पाकिस्तान के साथ उनका लिंक नहीं है तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि काबुल में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो पाकिस्तान के लिए अच्छे ख्वाहिशात न रखती हो।
ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नाजिश। नाजिन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगु सुनी और जो नतीजा निकला वो ये कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है और अफगानिस्तान में अगर पायदार अमन कायम होगा तो जो उसके हमसाया ममालिक हैं, पाकिस्तान ईरान जैसे ममालिक, इनके आपसी इत्तेहाद, आपसी ताउन और आपसी मुफाहमत से ही कायम हो सकता है। अख्तियार कभी भी अफगानिस्तान में ना तो अमन कायम कर सकते हैं और ना कायम कर सकेंगे, और इसकी मिसाल गुज़िश्ता 11 बरस से दुनिया के सामने मौजूद है। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे अली अब्बास रिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।